उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मैं तेरी उल्फत का प्यासा हूँ मेरे खुदाया, मेरे यीशु तुझसा नहीं देखा कभी कोई दूजा। नजर की तो ये जिंदगी मेरी हो गई पूरी। मैं तेरी उल्फत का प्यासा हूँ मेरे खुदाया, मेरे यीशु तुझसा नहीं देखा कभी कोई दूजा। से भर दे ऐसा जुनून तू दे दे, रूल कुदूस से भर दे अपने लिए यीशु कामिल तू कर ले, अपने ही जैसा प्यार सिखा दे। मैं तेरी उल्फत का
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी आज परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो बहुत ही रुचिकर पुस्तक है। इसमें हम देख रहे हैं कि अय्यूब, जो परमेश्वर का एक खरा व्यक्ति है, वह बीमार से ग्रसित है और तब उसके तीन मित्र उससे वाद विवाद कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से एक बार अय्यूब के जीवन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं अपने जीवन में उसे समझ सकें और उसे ग्रहण कर सकें। हमारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, दुखी हैं, परेशान और चिंतित हैं। आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, ताकि हर एक जीवन आज आपके वचन के द्वारा आपकी महान आशीषों को ग्रहण कर सके। इस समय हम सबके साथ हो, हमारे सहायक हो। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 24 में भी अय्यूब के प्रतिवाद को देखेंगे जो अभी भी चल रहा है। एलीपज ने अय्यूब से कहा था, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। अतः अय्यूब ने परमेश्वर को खोजने की अपनी मनोकामना व्यक्त की। अय्यूब उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में जानता था, वह उसे मुक्तिदान अर्थात छुड़ाने वाला कहता है, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे स्वर्ग से शांति, सहायता और ज्योति की आवश्यकता थी जो उसके मित्रों से उसे नहीं मिल रही थी। एलीपज ने सोचा कि अय्यूब के जीवन में गुप्त पाप है और उसे उभारने का प्रयास भी किया। इसका प्रभाव अय्यूब पर यह पड़ा कि वह अधिकाधिक अपना बचाव करने लगा। वरन उसने एक और प्रश्न पूछा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसी कठोरता क्यों कर रहा है? वह पाप में मग्न लोगों को तो अनदेखा करता है जो खुल्लम खुल्ला पाप करते हैं। मेरे मित्र, अध्याय 24 में उसके विवाद का यही बल है। तो आइए हम देखें अय्यूब की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों नहीं देखने पाते? कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं। अब वह मनुष्यों के पापों की सूची देता है। कुछ लोग भूमि की सीमा बढ़ाते हैं जो धोखा है। आगे लिखा है अय्यूब की पुस्तक 24 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बंधक रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठा छिपना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे अपने आदान प्रदान में धोखा करते हैं और आवश्यकता में पड़ने वालों से अवैध लाभ भी उठाते हैं। अय्यूब 24 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। दुष्ट की भूमि भी उतना ही अन उपजाती है जितना धर्मी की। अय्यूब पूछता है, ऐसा क्यों होता है? हत्यारे, लुटेरे, व्यभिचारी सब दुष्ट सामान्य मनुष्य की नाई कब्र में जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 24 अध्याय के 25 पद में, क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? अय्यूब के मित्रों ने उसकी सहायता नहीं की, उन्होंने उसे शिकायत करने का एक और अवसर दे दिया। मेरे मित्रों, मैंने अपने सेवा काल में असंख्य बार एक प्रश्न सुना है, परमेश्वर मेरी ही साथ ऐसा क्यों करता है? अय्यूब भी यही पूछ रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? वह सोचता है, मैं तो धर्मी हूँ, परंतु वे लोग कैसे दुष्ट हैं? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक आम प्रश्न है। अय्यूब परमेश्वर को नहीं समझता है और हम देखेंगे कि वह स्वयं को भी नहीं समझता है, परंतु अय्यूब अपने इस सीमित ज्ञान में भी परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता है। यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम देखेंगे अध्याय 25। इसका विषय है विलदत का तीसरा वाद। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि विलदत कथन कहता है और अय्यूब को इसका जवाब देता है। यह विलदत का अंतिम भाषण है और सौभाग्य से यह छोटा भी है। मेरे विचार में विलदत को प्रकाशन प्राप्त होने लगा है। वह बड़ा ही सोचने वाला और बुद्धिमान मनुष्य था। अति संभव है कि वह सोचने लगा था कि यदि अय्यूब दोषी है तो इतने वाद विवाद के बाद वह टूट क्यों नहीं गया। वह अब भी एक निष्ठा बनाए हुए है। वह समस्त विरोधों का सामना करके खड़ा है। स्मरण रखें कि विलदत प्रथाओं का मानने वाला है। वह मानता है कि परमेश्वर नियमों का पालन करता है। हजारों वर्ष से जैसा होता आ रहा है वैसे ही होना चाहिए। परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। वह एक वैज्ञानिक की नाई है जो परखनली में जीवन डाल करके कहता है कि सदा ही ऐसा होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का नियम है कि वह दुष्टों को दंड देगा। वह उलझन में पड़ जाता है कि अय्यूब यदि दोषी है तो उसका मनोबल क्यों नहीं टूट रहा है। मेरे मित्र, आज वैज्ञानिक और धर्म विज्ञान के विद्वान दोनों पृथ्वी की सृष्टि के बारे में ज्ञान प्रकट करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जानते हैं कि परमेश्वर ने 2 करोड़ वर्ष पूर्व किसी परिस्थिति विशेष में क्या किया था। हमारे पास भ्रष्ट बुद्धि की एक पूरी पीढ़ी है, परंतु मैं संभवतः सबसे बड़ा संशयवादी हूँ जिसे आपने कभी देखा है। ज्ञान की यह कल्पना उचित नहीं ठहराई जा सकती। मेरे मित्रों, वे तो यह भी नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो वे 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बातों को इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं। मेरे विचार में वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं, वरन अपने सुनने वाले को भी मूर्ख बना रहे हैं। मैं तो इन लोगों से ऊब गया हूँ। क्या कोई उत्पत्ति अध्याय 1 का अभिप्राय समझता है। यदि मूसा आज इन वैज्ञानिकों की बातें सुनता तो हंसकर कहता, ओह, इन बच्चों ने मेरे उत्पत्ति विवरण लिखे जाने के बाद क्या सीख लिया है। वे तो मुझसे भी अधिक जानते हैं। विलदत और हमारे आज के विद्वान यह भली भांति जान ले कि परमेश्वर के भेद अगम्य है। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, जहां पर विलदत कहता है, तब शूही विलदत ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। जी हाँ, उसके मन में परमेश्वर के लिए उच्च विचार थे। यह बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 25 के 3 पद में, क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है। कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता। अर्थात परमेश्वर परम प्रधान है। अय्यूब 25 के 4 में लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है। मेरे मित्र, यह एक अति उत्तम प्रश्न है। वह आरंभ में यह प्रश्न करता तो अच्छा होता। यद्यपि वह एक सही प्रश्न पूछता है, परंतु उसके पास सही उत्तर नहीं है। अय्यूब 25 अध्याय के 5 पद में लिखा है, देख उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्बल नहीं ठहरते। जी हाँ, हम चांद पर जाकर आ गए हैं और हमने देखा कि वह एक गंदी जगह है। वह ज्वालामुखी की राख है। पिकनिक के लिए अच्छा स्थान भी नहीं है। चांद पर जाकर उसका रोमांच भी जाता रहा है। पृथ्वी पर से चांद और चांदनी अति मनोरम प्रतीत होते हैं। मंगल ग्रह भी कोई साफ जगह नहीं है। सितारे भी परमेश्वर की सृष्टि में शुद्ध नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 25 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसका सामना करना नहीं चाहते, परंतु मैं चाहता हूँ। आज मनुष्य कहता है कि हमारा विकास कीड़े से हुआ है। हम कीड़े हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम कीड़े ही हैं। स्त्री से जन्मा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध कैसे हो सकता है। यह एक अच्छा ही नहीं परंतु सर्वोत्तम प्रश्न है। विलदत के पास उत्तर नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास इसका उत्तर है। मेरे मित्र, यहाँ पर अध्याय 25 भी समाप्त होता है और अब हम आगे देखेंगे अध्याय 26 में, जहाँ पर अय्यूब का 8वां प्रतिवाद है, या यूं कहें कि अय्यूब का उत्तर है। यह अय्यूब का सबसे लंबा विवाद है। अध्याय 26 से 31 अय्यूब अपने सृजनहार परमेश्वर में विश्वास का अंगीकार करता है और हमारे सामने उसकी समस्या उभर कर आती है। आइए हम पढ़ें अय्यूब 26 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने कितनी अच्छी सम्मति दी और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। बिल्दत, तुम्हारे पास मेरा उत्तर नहीं। सोपर, तुम्हारे पास भी उत्तर नहीं। एलिपच, तुम्हारा उत्तर मुझे सहायता नहीं पहुंचाता है। तुमने बहुत कुछ कहा परंतु तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें अय्यूब के लिए अर्थहीन थी, क्योंकि उनमें से कोई भी उत्तर नहीं दे पाए कि अय्यूब क्यों कष्ट उठा रहा है। हम पढ़ते हैं अय्यूब 26 के 4 पद में, तूने किसके हित के लिए बातें कही और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली। ध्यान दीजिए, तूने किसके हित के लिए बातें कही। बिल्दत, तूने एक अच्छा प्रश्न पूछा परंतु इसका उत्तर तेरे पास भी नहीं है। तेरी बातों से किसे लाभ हुआ। अब अय्यूब अपना विवाद आरंभ करता है और अपना दिल खोल देता है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है और कुछ बातें तो बहुत गहरी हैं। वह सृष्टि और सृजनहार परमेश्वर से आरंभ करता है। अय्यूब 26 अध्याय उसके 5-7 पद में हम पढ़ते हैं, बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। इस विषय में अनेक विचार किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर में रिक्त स्थान है और उत्तर में एक ऐसा स्थान है जहां सितारे नहीं है। सच तो यह है कि उस स्थान को उत्तर दिशा का छिद्र कहा जाता है। तथापि हमारे रेडियो दूरबीन द्वारा हम अंतरिक्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं देख पाए हैं जहां सितारे ना हो। अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर ने अंतरिक्ष को भर रखा है। अंतरिक्ष भी परमेश्वर की रचना ही है। यदि यहाँ एक सितारा परमेश्वर ने बनाया है तो अंतरिक्ष के उस पार दूसरा सितारा बनाया है। आज मार्ग में दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु ये सितारे आपस में नहीं टकराते। क्यों? परमेश्वर ने उनके बीच खाली जगह रखी है। यह खाली जगह क्या है? अति संभव है कि कोई कहेगा शून्य। मेरे मित्रों, मैं यह तो नहीं जानता कि वह क्या है, परंतु वह अवश्य कुछ है जिसे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह सितारों को एक दूसरे से अलग रखे। सुनिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 38-39 पद में, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। न कोई और सृष्टि अर्थात कोई भी सृजित वस्तु रिक्त स्थान भी परमेश्वर द्वारा सृजा गया है। मेरे मित्रों, यह हमें सोचने पर विवश करता है, यह रिक्त स्थान या खाली जगह क्या है। चांद पर जाने में बहुत समय लगता है, पृथ्वी और चांद के मध्य का यह स्थान क्या है। अब आप मुझे यह न कहें कि वह कुछ नहीं है, वह निश्चय ही कुछ तो है। वह क्या है जानता, मैं इसका विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि हम इसे अंतरिक्ष कहते हैं, जिसे परमेश्वर ने बनाया है और वह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अय्यूब को किसने यह वैज्ञानिक तथ्य समझाया था? ध्यान रखें कि अय्यूब पितरों के युग में था, परंतु वह जानता था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है। परमेश्वर इस गोले को बिना सहारे लटकाए हुए है, परंतु इसके निश्चित समय प्राचीन खगोल शास्त्रियों की समझ से बाहर थे। मेरे मित्र, अय्यूब जानता था कि परमेश्वर पृथ्वी को बिना टेक लटकाए रखता है। यदि वह गिरे तो किस ओर जाएगी? हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, परंतु वह तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है। अब अंतरिक्ष में बहुत दूर चले जाएंगे तो वहां किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होगा, तो फिर ऊंचा और नीचा क्या होगा? उसे वहां किसने लटकाया हुआ है? इसका उत्तर कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद में है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जी हाँ, पौलुस ने स्थिर के लिए यूनानी भाषा का जो शब्द काम में लिया है उसका मूल अर्थ है एक साथ रखना। मसीह यीशु के द्वारा सब एक साथ रखा हुआ है। अब हम अय्यूब के पुस्तक के एक महान भाग में आ रहे हैं। अय्यूब के मन में परमेश्वर का एक अद्भुत सृजनहार रूप था। वह वहां ढलाव पर बैठा सितारों को देखता था, वरन वह पहले भी सितारों का अध्ययन करता था। हम अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथ से वेग भगाने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है, फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? जी हाँ, परमेश्वर ने आकाश को सितारों से सजाया हुआ है। वेग भगाने वाले नाग संभवतः यह आकाश का एक सितारा गण है। वह परमेश्वर की महानता की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो अद्भुत सृष्टि आकाश मंडल का वर्णन कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अय्यूब सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानता था। अय्यूब उसे मुक्तिदाता भी मानता था, परंतु वह परमेश्वर को एक प्रेमी और संभालने वाले के रूप में नहीं जानता था। वह नहीं समझ पाया था कि परमेश्वर उसके साथ तब तक कुछ नहीं होने देगा जब तक कि उसमें उसका उद्देश्य पूरा ना होता हो। मेरे मित्र, अब हम इस पुस्तक के मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक हमारे जीवन के केंद्र तक पहुंचती है। अय्यूब के कष्टों में उसके लिए महान शिक्षा थी। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अय्यूब की पुस्तक की मुख्य शिक्षा यह नहीं कि विश्वासी कष्ट क्यों उठाता है। पुस्तक की विषय वस्तु कष्ट वहन नहीं है। इन सब के पीछे पश्चाताप अर्थात मन फिराव की शिक्षा है। परमेश्वर की संतान में मन फिराव। मेरे मित्र, परमेश्वर के पास आकर पापी मनुष्य का मन बदल जाता है। क्या यह सही है? प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 उसके पद 31 में पौलुस ने फिलिपी नगर के कारावास अधीक्षक से कहा था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस ने मन फिराव की तो बात ही नहीं की थी। मन फिराव तो विश्वास में ही है, क्योंकि जब पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो वह पापों से स्वतः ही फिर जाता है। फिलिपी नगर के कारावास अधीक्षक में संभवतः मूर्ति पूजा से मन फिराना था। वह उसका पश्चाताप था। मसीह की ओर फिर जाना ही मुख्य बात है। आज अनेक परमेश्वर की संतान और अनेक पापी मनुष्य आत्मनिर्भर हैं। इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि एक आत्मनिर्भर मनुष्य को मन फिराव की आवश्यकता है। यही उस पुस्तक की सर्वोच्च शिक्षा है। मेरे मित्र, अब हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 27 अध्याय उसके 1-4 पद में, जहां पर लिखा है, अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। मेरे मित्र, इस पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैं दूसरे शब्दों में इसे कहता हूं, परमेश्वर की शपथ जिसने मेरी निर्दोषिता मिटा दी और सर्वशक्तिमान जिसने मेरा प्राण कड़वा किया। जब तक मेरी सांसें हैं और परमेश्वर का आत्मा मेरी सांसों में है, मेरे होठों से अधर्म की बात नहीं निकलेगी, न ही मेरी जीभ छल की बात कहेगी। अय्यूब यहाँ पर स्पष्ट करता है कि वह डिगा नहीं, वह दृढ़ है, सो पर चुप है। इसलिए अय्यूब आगे कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे मित्रों के लगाए आरोपों को स्वीकार नहीं करूंगा। इसके विपरीत वह आगे कहता है अय्यूब 27 उसके 5 पद में, ईश्वर न करे कि तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। वह हठी है नहीं क्या? उसके मित्रों ने उसे अधिकाधिक आत्मरक्षक बनाया। अपनी रक्षा में विवाद करने के कारण उसमें मन की दीनता नहीं आ रही थी, वह टूट नहीं रहा था। उसकी बातों से प्रतीत होता है कि परमेश्वर अधर्मी है और अय्यूब पूर्ण रूपेण निर्दोष है। वह कहता है मैं अपनी खराई से न हटूंगा। मेरे मित्र, यहाँ पर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि वह अपने आप को बहुत नजदीकी से जानता था, लेकिन कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब जो कि एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रेम करता था, अभी तक जो भटक जाने के बाद भी इस बात को स्मरण करता है कि वह परमेश्वर के साथ में है। मेरे मित्र, आइए आज हम अपने जीवन को अय्यूब के जीवन के प्रकाशन में देखें और टटोल करके जांचें कि क्या मैं परमेश्वर की निकटता में हूँ, क्या मैं खराई से चल रहा हूँ या मैं दुनियावी बातों से उलझा हुआ हूँ। आज मुझे और आपको भी एक अवसर दिया गया है ताकि हम प्रभु के पास आएं, अपने जीवन को उसकी निकटता में लाएं और उन महान आशीषों को समझ जाएं कि वह मुझसे प्रेम करता है, वह मेरी चिंता करता है, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह हमेशा तैयार है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे एवं सहायता दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।